मुख्य समाचारों में, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा कोविड 19 के सकारात्मक परीक्षण के बाद क्वींसलैंड के एक नर्सिंग होम में लॉकडाउन। नेशनल कैबिनेट द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए $48 मिलियन के पैकेज की घोषणा। भारत में कोरोना वायरस के मामले 82,000 के करीब। और लीजिए समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। क्वींसलैंड स्वास्थ्य अधिकारियों ने नॉर्थ रॉकहैम्पटन एज्ड केयर को बंद करते हुए कोरोना वायरस के लिए परीक्षण में तेजी लाई है। वहां पर एक नर्स का कल बृहस्पतिवार को कोविड 19 वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण हुआ है। इस सुविधा के 100 से अधिक निवासियों और 180 हेल्थ केयर वर्कर्स का मूल्यांकन किया जा रहा है और कुछ लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में जाना पड़ सकता है। रॉकहैम्पटन में कोविड 19 के अंतिम मामले का मार्च में पता चला था और अंतिम सक्रिय मामला मई की शुरुआत में ठीक हो गया था। क्वींसलैंड मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेनेट यंग का कहना है कि इस नए मामले के कारण वायरस आगे नहीं फैले, इसके लिए एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता है।
And the healthcare worker who was diagnosed last night had been working in that facility whilst unwell, which is very unfortunate, and we're clarifying what exactly happened there.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इस सप्ताहांत में सतर्क रहने और कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए ऑस्ट्रेलियन लोगों को याद दिला रहे हैं। फेडरल सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते $48 मिलियन की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग योजना का अनावरण किया है। श्री मॉरिसन ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श टेलीहेल्थ सेवाओं पर हो रहे हैं और इनकी संख्या भी कुल मिलाकर लगभग महामारी के पहले के स्तर की तुलना में वापस हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य और टेरिटरी सामान्य होने के पहले चरण की ओर बढ़ रहे हैं और इससे ऑस्ट्रेलिया संकेत दे रहा है कि वो सामान्य आसार की ओर वापस आ रहा है।
So that is welcome. It's an important reminder to all Australians.
Northern Territory में आज शुक्रवार दोपहर से कोरोना वायरस सुरक्षा नियमों के तहत रेस्टोरेंट, बार और कैफे दोबारा खुले हैं। ग्राहकों को भोजन का ऑर्डर करना होगा और वो 2 घंटे तक वहां अंदर रुक सकते हैं। 5 जून तक के बाद ये प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। डार्विन स्थानीय वेन विलियम्स का कहना है कि कार्य के एक व्यस्त सप्ताह के बाद अपने दोस्तों के साथ वापस बाहर आना एक राहत की बात है।
Got a beer, yeah. Feeling good. It's been a long time coming, so it's been a bit of a tradition for us, the old Friday beers after work. So, feeling good. It's good to be back. Nice weather.
न्यू साउथ वेल्स में कुछ चर्च और पूजा स्थल आज से फिर से खुल गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील दी गई है। कोविड 19 नियमों का पालन करते हुए 10 लोगों को पूजा स्थल के अंदर जाने की अनुमति है। तस्मानिया की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक रिकवरी रिस्पांस कार्यक्रम विकसित कर रही है। तस्मानिया कोरोना वायरस महामारी के दौरान अत्यधिक कठिन हालातों से गुजरा है। राज्य में प्रतिबंधों में ढील का पहला चरण सोमवार से शुरू हो रहा है और सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रीमियर पीटर गुडविन का कहना है कि राज्य एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और सभी को तस्मानिया के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
We'll also be backing business to do what they do best, investing, innovating, and most importantly, employing their fellow Tasmanians. Our state's traditional strengths haven't gone away, nor have the areas that we've seen significant growth in recently. So as part of our plan to rebuild Tasmania, we'll focus on our strengths in sectors that underpin our economy.
ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि विदेशों में बच्चों से जुड़ी बीमारी जो संभव है कि कोविड 19 से जुड़ी हो वो यहाँ स्थानीय रूप से प्रभावित करे, ऐसी संभावना नहीं है। न्यूयॉर्क में 85 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें 3 बीमार बच्चों में कोरोना वायरस का परीक्षण किया गया है और डॉक्टर्स यूरोप में भी इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर ब्रेंडन मर्फी का कहना है कि कोरोना वायरस और इस सिंड्रोम के बीच संभावित संबंध अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोविड 19 बहुत से बच्चों में भी नहीं है।
We had a discussion on the very rare condition in children, which you've all heard about from overseas, the paediatric multisystem inflammatory syndrome, and I was able to brief them on the fact that this is extremely rare.
अमेरिका में विसलब्लोअर डॉक्टर रिक ब्राइट चेतावनी दे रहे हैं कि कोविड 19 वैक्सीन के उपलब्ध होने के बाद देश में इसके उत्पादन और उसे वितरित करने की रणनीति का अभाव है. कांग्रेस के लिए अपनी गवाही में मिस्टर ब्राइट ने आरोप लगाया कि महामारी की तैयारी के लिए ट्रंप प्रशासन को आगाह करने के बाद उन्हें एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक पद से हटा दिया गया था. मिस्टर ब्राइट एक वैक्सीन विशेषज्ञ हैं जिन्होंने स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में जैव रक्षा एजेंसी का नेतृत्व किया है. वो कहते हैं कि यूएस आधुनिक इतिहास में सबसे काली सर्दी यानी द डार्केस्ट विंटर इन मॉडर्न हिस्ट्री का अनुभव कर सकता है.
Key critical challenges that we need to anticipate and prepare for early. Number one is the supply chain. For those vaccines, needed reagents and buffers and salts and various ingredients that go into a vaccine, as well as the glass vials that the vaccines are put into, and needles and syringes, and then a carefully coordinated distribution and administration strategy. We haven't yet gotten to those downstream strategies yet in our government, and I think those are going to become a significant issue down the road if we don't plan for that now.
इस बीच उत्तरी कैरोलिना के रिपब्लिकन सेनेटर रिचर्ड बूर सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष पद से हट गए हैं. एफबीआई ने कोविड 19 संकट से जुड़ी एक इनसाइडर ट्रेडिंग जांच के हिस्से के रूप में उनके फ़ोन पर एक सर्च वारंट दिया था. अमरीकी न्याय विभाग इस पर गौर कर रहा है कि क्या श्री बूर ने कोरोना वायरस से ठीक पहले शेयर्स की बिक्री करके कानून तोड़ा है, क्योंकि इसके बाद बाजारों में भारी गिरावट आई. भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आंकड़ा बढ़कर 82,000 के करीब पहुंच गया है. वहां देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते वर्तमान में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है जो 17 मई तक लागू रहेगा. 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा और सरकार की कोशिश है कि इस चौथे चरण में हालातों को काफ़ी सामान्य दिखाया जा सके. एनडीटीवी के अनुसार गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जहां तक संभव है सबसे पहली राहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दी जाएगी, जमीन पर और हवा में, यानी चिन्हित क्षेत्रों में हवाई और बस सेवाओं को शुरू किया जाएगा. और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 64 सेंट और भारत के 48 रुपए 77 पैसे के बराबर है. खेल समाचारों में, एएफएल क्लब्स इस सोमवार 18 मई से प्रशिक्षण को फिर से शुरू करेंगे. लीग का 2020 सीजन इस साल 11 जून से फिर से शुरू होगा. चीफ एग्जीक्यूटिव गिलन मैकल्च का कहना है कि सभी कर्मचारी और खिलाड़ी खेल को किसी भी प्रकोप से बचाने के लिए कोरोना वायरस परीक्षण में भाग ले रहे हैं. मार्च में प्रतियोगिता को केवल एक पूर्ण दौर के बाद निलंबित कर दिया गया था और पूर्ण संपर्क प्रशिक्षण यानी कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग 25 मई से शुरू होगी. श्री मैकलाचन का कहना है कि आज की ये घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है. और अब बात मौसम की. मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री. एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री. मेलबर्न में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री. होबार्ट में भी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री. कैनबरा में सुबह के समय फ्रॉस्ट रहेगी, अधिकतर धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 0. सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री. ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री. और डार्विन में भी मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस. और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए.